परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कि जात हूँ और कहूँ बजा कर ढोल और सांस खाली जात है, 3 लोग का मोल। परमात्मा हमें कहते हैं कि ये देही सोंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल, ये मनोशरीर इतना सस्ता नहीं है, ये रत्नों के भाव का है। और यदि इससे सतभक्ति नहीं की तो ये कौड़ी का कोनी है, एक कौड़ी का नहीं है। तो इन बातों को ध्यान करके हमने सिर पर पांव रख लेना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर दर पांव और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। 5 तत्व का पुतला ये मानुष धरिया नाम, दिनाचार के कारण यो फिर रोक के ठाम। ये 5 तत्वों का पुतला, इसका मानुष धर दिया नाम, और 4 दिन का जीवन है इसका, और उसमें ना जाने कहां कहां जगह जगह लोग हैं, स्थान रोकता फिर रहा है, यहां कोठी बना लो, वहां एक प्लाट ले लो, कैथल में एक बढ़िया सस्ता प्लाट मिला है वहां ले लो, फिर गुड़गावा में एक प्लाट निकला है वहां ले लू, और इतना मृत्यु हो जाए। जो लेना था वह चीज ली को ना, फिर गधा बनकर सैर सपट्टा, कुत्ता बनकर फिर अंडेगा धक्के खानता। ते हैं 5 तत्वों का पुतला ये मानस धर दिया नाम, और 4 दिन के कारण यू फिर रोक के ठाम, स्थान रोकता फिरता है। कबीर कहां गर्भी यो ये ऊंचा देख आवासे, काल पड़े भूलेटना तेरे ऊपर जम गासे। परमात्मा कहते हैं, इस ऊंची कोठी ने देख के तू की राजी हो रहा है, क्यों भूल गया, क्यों भरमिया फिरता है नालायक, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी, और फिर तुझे फूक देंगे, जला देंगे, सवा कर देंगे, और तेरी राख के ऊपर फिर घास जमेगा, डांगर चरिया करेंगे। कबीरा कहां गर्भी हो ये देही देख सुरंगे, बिछड़वा मिलसी नहीं जो कांचली भोजंगे। परमात्मा कहते हैं, शरीर ने देख के राजी हो रहा है, क्या फूला फिरता है, एक बार ये शरीर छूट गया फिर ऐसे जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, दोबारा उसमें प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसे तेरी स्थिति हो जाएगी, तुम शरीर तेरा श्वास पूरे हो जाएंगे, यहां कोई नहीं रहने देगा। कबीर कहां गर्भियो ये चाम लपेटे हाडे, इस कहते कहां फूला फिरा है ये चाम लपेटे आड़, इन आड़ा के ऊपर चाम लपेट रहा, खैर इसमें तो फूला फिरता है। कबीर कहां गर्भी हो ये चाम लपेटे हड, हैवर ऊपर छत्र सिर ते भी दिए खड। यानी जो राजा लोग थे ऊपर उनके छत्र तान कर चला करते थे, वो भी अंत में खड्डे में गाड़ दिए, उनकी भी नीचे जमीन में दबा दिए। कबीर कहां गर्बिया ये काल गह कर कैसे, ना जाने कित मार सी भाई के घर के परदेश। अपने आत्माओं इससे हमने बहुत कुछ गहराई से सोचना पड़ेगा। हम घर को अपना मान रहे हैं, मेरा घर मेरा घर। परमात्मा कहते हैं तू संपत्ति को अपनी मान बैठा है, तेरी काया भी तेरा शरीर भी तेरा नहीं है। अब ना जाने इस शरीर की कहां मौत होगी, क्या पता घर पर या कि तो बार एक्सीडेंट में अड़खन रहेंगे। कबीर कहां गर्बिया ये काल गह करके से, ना जाने कित मारसी के घर के परदेश। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, इतने चाला कर दिया कौन। मौत भूल गया बावड़े, इतने अचरज किया कौन। और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में नौन। कि तू अपने जाने वाले दिन को भूलने के कारण ही बकवाद कर रहा है यहां पर। और उस दिन को याद दिलाने के लिए ये इतना साजबाज जोड़ना पड़ा, सेड बनाया भक्तों ने हैं, और यहां बैठा कर आपको ज्ञान दिया जा रहा है। वो दिन याद दिला जा रहा है जिसको आप स्वप्न में भी नहीं सोच रहे थे अब हमारे साथ क्यों होगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारम्बार, वो भूली वस्तु लखा दवे है सतगुरु दातारे। के सतगुरु के दरबार में बार बार जाना और एक ऐसी भूली हुई वस्तु को याद दिलाएंगे, वो ऐसे दयालु है। अब कबीर कहां गर्भियो, कहां जन्मे कहां पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे ना बेरा इस देह के, कहां खंडेंगे हाडे। आप देखते हो एक्सीडेंट में परिवार के परिवार भी नाश हो जाते हैं, ना जाने कहां मृत्यु होती है। राजा लोगों को देख लो, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने से 3 दिन में तो उसके 100 मिला था, कहां पड़ा वो जंगल में। मनमान गिदड़ खा रहे हो उसको। और उसकी कितनी उमंग थी, कितनी आशाएं थी, आप खूब अच्छी तरह परिचित हो एक राजा की कितनी इच्छाएं होती है। परमात्मा कहे आशा एक जो राम की, दूजी आस निवार, और जिन पंथों तो चालना सोए पंथ संवार। एक परमात्मा की इच्छा के अतिरिक्त यदि तू कोई और इच्छाएं पाले बैठा है तो वो ठीक नहीं। जिस पंथ पे तुझे चलना है, परमात्मा के पाने के लिए जो चला है, तो उसी पर ज्यादा जोर दे, उसी को साफ कर, यानी सत भक्ति कर, भक्ति और दान धर्म दिशा बने अपना करता रहे। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे एक पोलैंड देश के प्रधानमंत्री और उसकी पूरी मिनिस्ट्री, सभी मंत्री सारे उसके साथ, उसके चीफ सेक्रेटरी पैक्ट्री सारे साथ जा रहे थे एक ही जहाज में। कहते हैं 98 व्यक्ति थे, 98 के 98 उस एक ही समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। और वो किसी का शोक व्यक्त करने जा रहे थे। अपने आत्माओं आप विचार करके देखो हमारे ऊपर कितना दबाव है तीनों गुणों का, इसने कितने जबरदस्त इंजेक्शन ला रखे हैं, इतना ज्ञान सुनकर और इतना कुछ घटना घट रही है, हम प्रतिदिन देख रहे हैं और फिर भी असर ना होता, फिर भी हमारे ऊपर वो उतना प्रभाव नहीं बन रहा। क्योंकि जैसे किसी का नशा हो जाओ और नशा उसके हो गया किसी चीज, शराब पी रखी सुल्फा पी रखा, फिर उसको कोई बताता है कैसे हो गया, अच्छा ऐसा हो गया ठीक। कोई कहे तो मेरे घर में चोरी होगी है, अच्छा चोरी होगी, हाँ चोरी होगी है। अब ये पता लग गया तेरे घर में चोरी होगी, नुकसान हो गया, तुरंत चल देना चाहिए उसने, वहां जाकर संभालना चाहिए क्या जुलम हो गया, क्या क्या नुकसान हुआ। तो हम ये जो आपको बता रहे हैं, ये आपकी चोरी हो रही है, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, आप सत भक्ति ना करके ये डरे ढोंड पर लगे हुए हो। आजकल तो ये ऐसी ऐसी साइंस के इंस्ट्रूमेंट बना दिए, मोबाइल फोन बन गए, एक मिनट भी फुर्सत नहीं, जिसका जरा सा किधर बिजनेस चल रहा है, कभी किसी का फोन, कभी किसी का फोन, किताब बकवास करने के लिए मिला रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिल्म इसके अंदर ना जाने किस प्रकार के गाने, फिल्म, अपना सारा दिन कितना बर्बाद कर लो। बड़ी बड़ी असुविधा दे दी काल ने, क्योंकि उसको पता था कि यह समय भक्ति का आ गया और इसने ये जुल्म करवाना था कि ये कोई भक्ति करे ही नहीं, इन बकवादा में बढ़ा रहे, सुने नहीं मालिक के नाम। लेकिन परमात्मा भी समर्थ है, पुण्यात्मा जिसके घर में कोई मौत हो जाती है, चला के देखियो टेलीविजन ने, और चला के देखना इस मोबाइल के अंदर बकवादों को, एक झटके में पूरा परिवार डिढाल हो जाता है। तो इस प्रकार के जब बकवादा करने वालों के घरों पर ऐसे हादसे होंगे, फिर वो भगवान की तरफ बाद में चलेंगे, आना पड़ेगा यहां पर। और जो भगवान की शरण में है उनके ऊपर आपत्ति नहीं आया करती, कभी नहीं आ सकती, यदि वो सत भक्ति करते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं, नियम तोड़कर रहते हैं, उनका कुछ भी हो सकता है। चाहे वो बेसिक उपदेश भी ले रखा है उन्होंने, लेकिन उपदेश खंड हो जाता है जिस दिन नियम भंग हो जाता है। फिर परमात्मा क्या बताते हैं, परमात्मा की भक्ति करनी है तो कौन से राम की भक्ति करनी है, हमारे साथ क्या क्या समस्याएं काल ने पैदा कर रखी है। कबीर माया पापणी ये फंदले बैठी हाटे, सब जग तो फंदे पड़ा गया कबीरा काटे। ये माया त्रिगुणमयी माया ये सभी को यहां फंसाए बैठी है, और साथ में ये दुर्गा माया ये भी जीव को यहीं उलझाने में लगी हुई है। परमात्मा ने तो ये कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिगुणमयी माया और इनका पिता ज्योति निरंजन धर्मराय कहलाता है, और ये दुर्गा, इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहां फंसा रखा है। हम जो तुम्हें बोल रहे हैं वचन, इनके ऊपर गहराई से विचार कर। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में, उसमें क्या लिखा है कि अर्जुन ये सभी प्राणी जो हैं, ये दुर्गा तो मेरी पत्नी है, ये प्रकृति मेरी पत्नी रूप में है, मैं पति हूं इसका, और इसके गर्भ में बीज स्थापना करता हूं जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन इस दुर्गा से प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये जीव को कर्मों के बंधन में इस संसार में फंसाए रखते हैं, शरीर में बांधे रखते हैं। और परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि काल तो अपने आप को फरी समझता है ये कहकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों गुणों ने तुम्हें फंसा रखा है, कि नहीं, परमात्मा ने अपनी वाणी में यथार्थ ज्ञान दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और दुर्गा और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया या वाणी हमारी लगी। हमारे ज्ञान को तू समझ लेना, गहराई से सोचना, लहना, लहने का अर्थ होता है एक तो स्वाभाविक सुनना, एक थोड़े को गहराई से सोचना कि संकेत भी समझ लेना, लहना इसका अर्थ होता है। कबीर ये माया पापनी फंदले बैठी हाटे, सब जग तो फंदे पड़ा भई गया कबीरा काटे। कबीर माया पापनी लारे लाए लोगे, अर पूरी किने न भोगिया इसका यही विभोगे। ये माया धन संपत्ति भी माया है। पुण्यात्माओं, माया कोई धन धन नहीं है, पुत्र भी माया है, पुत्री भी माया है, बेटा भी माया है, पति भी माया है, पत्नी भी माया है, माता पिता भी माया में आते हैं, संपत्ति भी माया है जो हमें यहां पर हमारी दुर्गति करती है। जैसे एक समय गंगा के प्रथम स्नान के विषय में पर भी के ऊपर दो ऋषियों के संतों के गुटों में लड़ाई होगी, और कटका मर गए, तो प्रथम स्नान के ऊपर तो वहां वो गंगा का पानी माया बन गया, वो स्नान माया बन गया जिसने इन सब का नाश कर दिया। तो ऐसे हमने इस माया के जाल को समझना है। क्या बताते हैं कबीर, माया पापनी ये लारे लाए लोगे, पूरी किन्होंना भोगिया इसका यही वियोगे। इस माया को जैसे आप देखते हैं, सुना भी है, जैसे आप बताया था कि कोई भी व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं होता, भगवान का अच्छा सतगुरु नहीं मिलता, तो वो अंतिम सांस तक भी माया के ही चक्कर में मर जाता है, उसका काम पूरा नहीं होता। जैसे परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। अपने आत्माओं, जैसे अंत समय में भक्ति राम का नाम कौन जपेगा? क्या कहते हैं भाई, अंत समय में जो परमात्मा को याद करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो वो उस के पास पहुंच जाता है, तो अंत समय में जाप भक्ति कौन करेगा? मृत्यु के समय परमात्मा की याद किसने आवेगी जिसने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे आप जी को रह रहकर बताया जाता है कि भगवान का भक्ति सिमरण गणा करा करो। सिमरण करने का तरीका कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष अलग से कोई पर्टिकुलर विधि नहीं है, साधारण सिंपल सहज मार्ग है ये। जैसे चलते फिरते उठते बैठते आप अपनी गाड़ी लेकर आते हो, या बस में या रेलगाड़ी में बैठकर जाते हो, किसी से गप्पे मत मारो यहां से लेकर वहां तक। जैसे यहां से दिल्ली जाते हैं, एमपी में जाते हैं, दूर तक जाते हैं, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, तो अपनी भक्ति करते जावे, परमात्मा का सिमरण करता जाए वहां से लेकर यहां तक। जैसे आप दिनचर्या आपकी है, कोई कहीं मजदूर है, खेती करता है, दुकान पर जाता है, ऑफिस में जाता है, तो उस रास्ते वाले समय का भी सदुपयोग करे, उसका नाम लेता जाए, भगवान की भक्ति करता जाए। मोटरसाइकिल पर जा रहे हो तो मोटरसाइकिल चला भी रहे हो और सिमरण भी करिए, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि कुछ जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अपने आप हाथ क्लच पे और पैर गियर पे अपने आप चलते रहते हैं। आदमी का ध्यान कहीं होता है और वो अपने आप एक्ट, कुदरती सहयोग देते हैं हमारे को हर कार्य में, और मन अपना फ्री होता है, तो मन इधर उधर की बकवाद सोचने की बजाय राम नाम पर लगाए रखे। अब ये दास जब सर्विस करता था तो स्कूटर या मोटरसाइकिल होता था, तो अपने ऑफिस से जब चलता था रोहतक के अंदर सर्विस करता था, वो इधर सिल्ला बाईपास के पास ऑफिस था, यानी इधर दिल्ली साइड में, और इधर इसार साइड में कती लास्ट में आके बाहर कॉलोनी सी थी, वैसे उसमें मकान था, तो वहां से लेकर वहां तक लगभग 10-12 किलोमीटर पड़ते थे, और बीच में वो आता था एक भिवानी स्टैंड, और उसमें वो रोहतक का मुख्य बाजार था और उसमें इतनी भीड़ लगी रहा करती थी। तो ये एक बार घर वाले कई बार वस्तु मंगा लेते थे, वो चीज लाना, वह लिस्ट बनाकर दे देते कि आते समय ये घर का सामान लाना। तो कई बार ऐसा होता था दास की उसी समय मोटरसाइकिल शुरू करते ही और भगवान के सिमरण में लग जाता था, और मुझे ये भी नहीं पता लगता था कई बार तो कि मैं बिहानी चौक पर गया, उस किला रोड पर गया, किस टाइम मोटरसाइकिल काट कर वहां घर आ लिया। जब घर वाली गली की तरफ मुड़ता था, जब याद आती थी रे कुछ सामान भी लाना था, तो वापस जाता था जब वो सामान लेकर आता था। और रोहतक में दास का ऑफिस था, जेई की सर्विस करता था। इधर कौशली साइड में हमारा कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था, तो वहां से लेकर 70 किलोमीटर पड़ती है रोहतक से कौशली, वहां से लेकर वहां तक मोटरसाइकिल में जाता था आराम से 2-2.5 घंटे में, धीरे धीरे अपना वजन करता जाता था। पेट का भी गुजारा होता रहता क्योंकि वहां अपनी नौकरी भी करके आता, जो समय बीच का था उसका डट का वजन करता। अब कोई कहता सुबह भक्ति करो वो बहुत बढ़िया समय होता है, ये बकवादियों की बातें होती है। और ये जो दास बताता है, दास एक सिविल सर्जन है, समझो इस मार्ग का डॉक्टर है, और कोई अन्य मरीज आपको कोई विधि बताता दवाई लेने की, वो तेरा दुश्मन है। क्या डॉक्टर को पता नहीं इस बात का कि तुझे कौन सी दवाई देनी है? एक मरीज के कहने से तुम कह रहे हो, कोई कहता सुबह 2 बजे तक लेगा, 5 बजे तक भक्ति करो, थरा सर करे और बाकी समय फिर अग्नि गाओ। 2 से 5 एक मजदूर आदमी है, कोई भी है, जैसे खेतीहर है या मजदूर है या दुकानदार है, कोई अपना नौकरी वाला है, सारा दिन मानसिक या शारीरिक कार्य से टूट लेता है और 2 से 5 वो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल 8-9-10 बजे तो पहले सोया जाता ना। तो भक्ति अवश्य करो, ये नहीं कहा मान ले किसी का एबिचुअल है वक्त उठने का, खूब करो। जिस समय आंखें खुल जाए, हिम्मत है तो किसी समय, जब भी आंखें खुल जाए, जैसे आप मरोड़ा लेते हो, करवट बदलते हो और आंख खुल गई, उसी समय भी सिमरन 10-20 सिमरन करे लेना चाहिए। जैसे आंखें फिर नींद आ गई तो सपने में भी वो स्वप्न हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि कबीर साहब कहते हैं, सपने में बरडाए के, स्वप्न में बरडाए के, जय कोई बोले राम, राम मीन जो मंत्र दे रखे उसका जाप करे, वाके पग की पावड़ी और मेरे तन का चामे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि जो सपने में बिरडा के भी जो मालिक ने याद करने लग गया, तो इतनी पुण्यात्मा हो गया है, उसके अंदर इतना रम गया है भगवान की भक्ति कि मैं उसके लिए अपने चाम की जूती बनवा दूं, मुझे इतना प्यारा लगता है वो प्यारी आत्मा। स्वप्न में बरडाए के जय कोई बोले नाम, वाके पग की पावड़ी और मेरे तन का चाम, यानी इतनी प्यारी आत्मा होगी मेरी। अब जैसे पहले हम अभ्यास कर रहे हैं तो अंत समय में हम ही बोलेंगे, हम ही मालिक याद कर सकते हैं और नहीं कर सकता। अब जैसे सारा दिन इस माया के लिए ये फल बेचने वाले बस स्टैंडों के आसपास क्या करते हैं, ले ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, केले बहुत बढ़िया हैं, ले ले 10 के 20, 11 के 20, यानी इस तरह की वो दिन में सारा दिन ये रटना लाते एक पेट के लिए, और फिर सपने भी उनको ऐसे ही आवेंगे, सपने भी सपने में भी ले ले देख के 10, ले ले 10 के 20 ये बोलेगा, और अंत में कौन सा फिर राम बोल सके है। हमारा एक अंकल था दूसरे दादा का, वो था सीधा सा बिल्कुल, उसको ये नहीं था कोई, अब किसी के घर चला जाता था वहीं खाना खा के लेट जाया करता था। पहले ऐसा सुख वैसे भी प्रेम बहुत ज्यादा था, तो वो क्या करा करता, बाजरे का रखवाला रहता था, बाजरे का रुखाल करते थे पहले, चिड़िया लग गया करती, अब तो चिड़िया तो नष्ट हो ली लगभग, तो उसमें चिड़िया बहुत होती थी और वो बाजरे को हानि पहुंचाया करती थी। उसके लिए फिर खेतों में एक मचान बना दिया जाता था, जोंडा डाला करते डामचा, उस पे सारा दिन एक व्यक्ति ऐसे गोफिये लेकर मारता था, पटाखे बोलता था, गोले मारा करता, तो उस हमारे अंकल की वह चिड़िया बगाने की ड्यूटी लग रही थी और वो 1 महीने तो कम से कम ऐसे रखना ही पड़ता है। और तो जैसे ऐसे करते थे ना, गोला मारते थे उसका मिट्टी का बनाकर गोफिये पर रख के, और साथ में और जो हर चुड़िया हर चुड़िया नौकरा करते, ताकि कुछ सोरते उड़ जाए कि मैं खुड़के थे एक आस पास डला पड़ जाए गोला उससे उड़ जाए। तो एक दिन वो हम अपनी छत पर बैठे, गर्मियों के दिन थे ये, बाद वैसे का महीना, तो ऊपर बैठे रात को पढ़ रहे थे, पहले लालटेन वगैरह ये भी ना थे, और हमने पता नहीं लगा वो किस टाइम आके, वो 2-3 चारपाई डली हुई थी छत पर, वो सो गया आके। हम पढ़ रहे थे रात के 12 बजे से, उसने एकदम आवाज लगाई हो टूट गया, हम डर गए एकदम, कोई दिखे पड़े वहां के आ गया भाई। वो दूसरा था मेरा साथी, ने बोला यो काका चंद्र आ रहा है, दिन में खवाला था कि तो चिड़िया हुआ, मैंने उठाया फिर, मैं चाचा के हो गया, नो नो उठा दे नो देख, बोला मैं किसो, अब तो मां तुम्हारे घर पर सोवे ऊपर, ओहो मन तो सोची मैं खेत में खड़ा हूं जोंडा के ऊपर डामचे पे और चिड़िया बगाऊ हूं, मन सपना आ रहा था भाई। तो पुण्यात्मा जो सारा दिन हर चिड़िया करेगा तो सपने में और चिड़िया, तो वो मरते समय भी उनका ये याद आओगे, स्वप्न में भी यही वो रट हो जाएगी। और हम भगवान की भक्ति सिमरन मालिक की वाणी ये याद करते हैं तो हमें सपने भी इन्हें क्या करेंगे, और अंत समय में आप ही बोल सकते हो, उस मालिक के नाम को सिमरन कर सकते हो, क्योंकि आपका ये अभ्यास कराया जा रहा है, ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। और अंत समय में भगवान भक्ति हम करते हुए श्री छोड़ गए तो हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसी के पास ले जाएंगे। गीताजी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, वो यहां किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, किसी वस्तु की चाह नहीं करता, तो वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा, वो तत्ब्रह्म वो परमात्मा है कौन जो गीता ज्ञान दाता से भी कोई और है। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है भाई। फिर आगे चल के अध्याय 8 के श्लोक 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 6 श्लोकों में एक नारी नारी अभिन्न भिन्न विवरण दिया है कि जैसे 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता हुआ कह रहा है कि जो मेरा सेवन करता है, अपना सेवन के विषय में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है जो उच्चारण करके इसका सेवन करता हुआ, शरीर त्याग कर जाता हुआ इसका उच्चारण करता हुआ जाता है तो मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। गीताजी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन ये नियम है, अंत समय में जो जिसका सेवन करता हुआ जिसके भाव में भावित होकर के शरीर छोड़ जाता है वो उसी को प्राप्त होता है। गीताजी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 तीन श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घन ब्रह्म के बारे में बताया है और उसके मंत्र के जाप के बारे में ऑप्शन छोड़ दी गीता ज्ञानदाता ने। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे समझो। और संकेत किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविद समर्थ है, ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म का सचिदानंद घन ब्रह्म का। ओम तत्सत ये तीन मंत्र के नाम का उच्चारण करने का जाप करने का निर्देश है, उसको से प्राप्त होगा। और उस ओम तो ये ब्रह्म का है ही और तत् और सत ये दोनों गुप्त हैं। गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, तीन प्रभु, एक सरपुरुष, सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है और उत्तम पुरुष तुअन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तर्माविश विवृति अवेश्वर है। वो इन दोनों से नारा जो उत्तम पुरुष है जो सबका धारण पोषण करता है और वास्तव में जो अविनाशी है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म के तीन मंत्र हैं, ओम मंत्र तो अक्षर पुरुष का यानी ब्रह्म का और तत् और सत ये गुप्त हैं, ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर कोई अधिकारी नहीं है। मान ले किसी ने तीनों मंत्र दास से ले भी रखे हैं और वो कहीं आगे नाम दे रहा है, वो धोखेबाज और दुष्ट आत्मा है, वो अधिकारी नहीं और डुप्लीकेट लाइसेंस और पासपोर्ट बना रहा है, वो आप भी धोखे में और उस बनाने वालों का भी जीवन, जिनके नाम दे रहा है उनका भी जीवन का दुश्मन है वो। तो क्या बताया कि उस तीन मंत्र के जाप से उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में साधना करने को कहा कि जो उसकी साधना करता है अंतिम श्वास तक उसकी भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो वो उस भक्ति की कमाई थे, उस नाम के मंत्र की कमाई से उस परमेश्वर को, उस तत् ब्रह्म को प्राप्त होता है। गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक स्पष्ट किया है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देता है, जड़ रूपी कौन भगवान है, तना कौन भगवान है, डार कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात क्या बताया कि तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, उस परमेश्वर तत्ब्रह्म के उस परम पद यानी विशेष स्थान पद का अर्थ होता है जैसे अमर पद, यानी कभी ना मरने वाले पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, खोज करो। और जहां जाने अमर लोक है, अमर पद, अमर लोक, अमर स्थान, अमर पद यानी अमरतव, सतलोक स्थान की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में वो प्राणी नहीं आता साधक, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं, उससे की भक्ति करनी चाहिए। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस तत्परम, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कह रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है कि अर्जुन 4वें अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहा कि अर्जुन मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। वो ये दास बताएगा कैसे अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में भी यही कहा है कि अर्जुन तू मैं और ये सब सैनिक पहले भी जन्मे थे आगे भी जन्मेंगे, हम अविनाशी नहीं हैं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अर्जुन अविनाशी तो उसको जान जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसको मारने में कोई समर्थ नहीं, कोई सक्षम नहीं है, वो समर्थ शक्ति है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। अब हमने भक्ति किसकी करनी है, उस परमात्मा की करनी है। अब प्रसंग जो चल रहा था वही आते हैं। कबीर माया पापनी हर से करे हरामे, मुख कड़ी हाली कुबद की या कहने ना देव रामे। कहती है माया ऐसी दुश्मन है आपकी, भगवान नहीं बजन देती, सारा दिन वानो कर दूंगा वानो कर दूंगा, वहां प्लाट बेचना है उसको, नू करना है वहां से करना है, राम नाम सोसो को मिलना वही जो मुकद्दर में है, आपके जो मालिक ने लिखा है आपकी किस्मत में, उससे कम जाता आप अपने प्रयत्न से नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही भूल गिर जाने से, यही भूल पड़ जाने से हम बकवादियां बहुत गए, आगा पीछा नहीं देखते, चोरी करण में, ठगी करण में है, और दूसरे के धन में नीत रखते हैं। और जब हमें ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि किस्मत में जो लिखा उससे कम और बत्ती नहीं होगा, लेकिन वो होगा कैसे, वो कबीर परमेश्वर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आने से आपको भाग्य से अधिक भी मिलेगा, यदि आवश्यक होगा, परमात्मा आवश्यक समझेगा तो आपकी किस्मत में ना होगा वो सुख भी देगा। मासा घटे न तेल बधे, बेदना लिखे जो लेखे, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। मासा घटे न तिल बधे, यानी कोई भी चेंज नहीं कर सकता, किसी के भी दुख या सुख को ना घटा सकता ना बढ़ा सकता। और पूर्ण परमात्मा सच्चा सतगुरु, अब यहां सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब देखो सतगुरु भी के साथ सच्चा लगाना पड़ा, वैसे तो सतगुरु का अर्थ ही सच्चा गुरु होता है। अब सतगुरु शब्द पाक गया, ये सभी सतगुरु बोलते हैं जो नकली संत हैं। अब गुरु से ये सतगुरु पाएंगे और सतगुरु छोड़ फिर जगत गुरु पाएंगे, तो इसलिए यहां सच्चा सतगुरु बोला गया है कि जो विश्व जो वास्तविक सतगुरु होता है वो परमात्मा का कृपा पात्र होता है और वही आपकी किस्मत में परिवर्तन कर सकता है और ऐसा कर देगा कि दोबारा आपके वो आपत्ति नहीं आएगी। ऊपर मारे मेख, यानी उसमें कील गाड़ देते हैं। पहले क्या क्या करते हैं, ये बका रखी थी हमारे बूढ़े बुढ़िया, कहते हैं कि एक मेख पड़ुआ के लिए यहां कील होते थे लंबे लंबे, ये मेख बोलिया कर टोपी से वाली लंबी, इतनी लंबी लंबी होती थी वो, और उनको देल यहां के ऊपर मार, देल के ऊपर काठ की देहल होती थी, यानी डोर के नीचे काठ की देहली हुआ करती थी, तो उसके ऊपर गाड़ देते कि मेख को, क्या मेख मार दी इब भूत तुम्हारे घर में आ नहीं सकते। तो परमात्मा कहते हैं मासा घटे ना तलबद है, गरीबदास साहिब ने कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए कहा है, मासा घटे ना तल बध है विधना लिखे जो लेख, तुम्हारे यहां के जो विधाता है इसने जो लेख लिख दिए वो कोई नहीं घटा बढ़ा सकता, लेकिन सच्चा सतगुरु मेट कर और ऊपर मारे मेघ, मेघ मिन वह भूत आपत्ति रूपी भूत फिर नहीं आ सकता आपके ऊपर। कबीर माया पापनी ये मांगी मिले नहाते, मन उतारी झूठ कर तब लागी डोले साथे। अब क्या कहते हैं, जब तक हम माया के पीछे दौड़ रहे थे ये आगे भाग रही थी, अब माया से उल्टे हटो। कैसे हटोगे, बीड़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, सट्टे लाना छोड़ दो, ये दहेज लेना और देना छोड़ दो, बड़े बड़े कोठी गाड़ना छोड़ दो, फिर माया आपके पीछे पीछे फिरेगी और परमात्मा आपको ऐसा मंत्र देंगे यहां से नहीं सतलोक से आने लगेगा आपके अगर पैसा। तो क्या बताते हैं, कबीर माया पापेणी ये मांगी मिले न हाथ, मन उतारी झूठ कर या लगी डोले साथ। जब हमने पता लग गया कि इसकी आवश्यकता हमने रही नहीं, तो कहते हैं फिर पीछे पीछे आओगी और खूब बरकत करेगी तेरे। कब करेगी, जब परमात्मा के चरणों में हम आ जाएंगे तभी हम इसे उल्टे हटेंगे, उल्टे हटेंगे फिर हमारे साथ होगी। आप देख लेना इस मालिक की इस लीला को भी देखना। कबीर माया बेसवा कबीर माया वैसा, ये दोनों की एक जाते, आवत तो आदर करे और जाते पूछे न जात। अपने आत्माओं अभी बताया था आपको कि कबीर साहब कहते हैं कि माया और वैसा की एक जाति है, एक जैसा स्वभाव है। आवे जब तो उसका आदर करते हैं, जाते की नहीं बात भी पूछते। जैसे आप देख रहे हो ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब बन जाते हैं तब तक दुनिया इनके पाछा पाछा नहीं, क्योंकि इनके साथ माया है। और जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ये अपने बरंडे में अकेले मुड्डा में बैठे माखी मारे, अगर कोई नहीं नमस्ते करने नहीं पाता। तो परमात्मा कहते हैं तुम भक्ति करो मालिक की, जो सदा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा सदा आदर रहे, और सतलोक में जाओगे मालिक के साथ में बैठ कर जाओ। कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खांडे, सतगुरु की कृपा वही ही ना तो करती बांडे। के मालिक की शरण मिल गई हमने, इसलिए हमने इसकी गणी चार ही को ना नया भांड करती भांड बिन सारा जीवन तो इसी के जोड़न जोड़न में मर जाते। और अंत समय में फिर करा के गधे बनते, कुत्ते बनते, धके खाते, अंडे बना दिए भांड। अब कहते हैं ना जैसा को सारा दिन भक्ति जैसी जिस विचारों में रहता अंत समय में उसके उसे ही विचार होते हैं। एक बुढ़ा मरे था, एक बुढ़े की मृत्यु हो गई थी, 70-80 वर्ष का हो गया था। और जब उसकी मृत्यु होने लगी तो वो, क्योंकि जो भक्ति नहीं करते उनकी जुबान ये यम के दूत बंद कर देते हैं, जब तक उनके श्वास पूरे करवाते हैं, गिन गिन के इसके 100 रह रहे हैं, 200 रह रहे हैं, 500 रह रहे हैं, तो पहले आ बैठते अंदर से उनकी जुबान रोक देते, पैरालिसिस कर देते, खिंच खिंच के सांस लेता है। और परिवार को भी पता लग जाता है बुढ़ा जाने वाला बुजुर्ग। तो बुढ़ा की मृत्यु हो रही थी बुजुर्ग की, और लेटा लेटा न्यू कर बोल नहीं सकता, संकेत कर रहा था, इशारे कर रहा था। घरवाला ने सोचा पिताजी कोई धन दबा रखा किता है जमीन में और कुछ बोल कर बताना चाहता पर बोल नहीं पा रहा है। उनको पता था कि यहां आसपास के कोई एक वैद्य था, वो ऐसी दवाई जुबान पर डाल देता था कि वो जब एक दो बार वो बोल सकता है, और वो 500 रुपए चार्ज करता था। उसको फटाफट लाए बुला के 500 रुपये उसने घर रखवा लिए, वे पैसे दे जाओ पहले, कहते ना दो तुम, फिर वो 500 रुपये वहां रखवा लिए, पहले 500 रुपये तो आज के 500,000 के बराबर समझो। तो वहां 500 रुपये दरवा लिए, तो वो आगे डॉक्टर वैद उसने वो बुढ़े की जुबान पर दवाई टपका दी और बुढ़ा हौसले में आया। तो लड़के कहने लगे पिताजी जल्दी बता दे कहां दबा रखा दंतन है। तू क्या कहता रे नकम्मे कित मर गए तुम, यो गाय का बच्चे ने झाड़ू खा ली, देख चार ने अगर नाश कर दिया। अब वो बालक माथे माथ मारे ने पिताजी या चार ने की झाड़ू मारे 500 रुपये में पड़ गई और बुढ़ा मर गया। अब वो बुढ़ा की मृत्यु होगी और वो उसकी वृत्ति मरण लग गया, जब उसकी ध्यान पड़ गया कि गाय का बच्चा झाड़ू को चबा रहा था और बूढ़ा नू कहना चाहता था, रे तुम नून देख लो, वो झाड़ू खा लिया, चारण्य का नुकसान हो गया। बच्चे ने सोची पिताजी की तो धन दाब रहा बताना चाहे। तो सारे जीवन में जैसी जिसकी वृत्ति रही, अंत समय में वही विचार उसके अंदर प्रभावित रहते हैं। तो पुण्यात्मा, हम ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे कि हमें अंत समय में मालिक याद आवे, और उसके लिए ये अभ्यास, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये सारा कुछ मिलाकर उस क्रिटिकल स्टेज पर हमारा साथ देगा, नहीं तो भूल जाता है प्राणी। फिर सतगुरु साथ रहेंगे तभी आप ये ध्यान रख सकोगे। कबीर माया डाकनी सबका हुको खाए, दांत उपाड़ो पापनी जो संतों नेड़े जाए। कहते हैं यह माया सब न बर्बाद कर देती है, इसके चक्कर में सारा जीवन बर्बाद कर जाते हैं और ये यहीं रह जाती है, और पाप इकट्ठे जो किए थे माया जोड़ने में वो संग चले जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जब मेरे भक्ता के आसपास भी आ गई तो तेरे दांत पाड़ दूंगा। ये पाट दिए दांत, हमें ज्ञान हो गया कि ये माया अच्छी चीज नहीं है, और भगवान की भक्ति करे थोड़े में गुजारा कराएंगे हम। परमात्मा की रजा में राजी रहेंगे तभी हम भक्त हैं। आप सच्चे दिल से लगे रहोगे, नियम में बंधे रहोगे, तो जो परमात्मा आपको दे उसमें संतुष्ट होना, चाहे थोड़ा दे या घना दे। हम परमात्मा को भूलकर संसार को देख करके अपने हिसाब से हम जब चलते तो परमात्मा दुखी हो जाता हमारे से। कबीर माया दासी संत की उभी दे आसी से, भोगी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदी से। क्या कितनी प्यारी बात की है परमात्मा ने कि माया दासी संत की नौकरानी है या माया। जब तुम परमात्मा की भक्ति करोगे, आपको ऐसे मंत्र दे रखे हैं कि आपके ऊपर अपने आप माया बरसेगी, नाम चाहोगे तो भी आपको मिलेगी। और कहते हैं विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदी से। अब कैसे अपने आत्माओं, ये दास देख रहा है कितनी महंगाई हो रही है, और आप जी ने माया का सदुपयोग करना आ गया। आप कहां कहां से आते हो, किराया लगा कर आते हो, काम छोड़ कर आते हो, और आपके घर में जब पहले से ज्यादा बरकत ना हो आप अपना हिसाब लगा सकते हो। तो कहते हैं आप यहां परमात्मा के लिए आते हो, ये किराया जो आपका भाड़ा है ये भी भगवान के पुण्य अकाउंट में लिखा जाता है, और आपको परमात्मा इतनी माया दे देगा, आप याद रखना अपना हाथ जोड़ने पड़ेंगे। इससे पीछा छुटा परमात्मा, इस दास के साथ जो बीती थी ये खूब अच्छी तरह जानता है। शुरुआत में हम लगे थे इतना ज्ञान था नहीं, भक्ति भी करते थे, आशा ये रहती थी कि और एक कोठी बन जाए, फलाना हो जाए, दखड़ा हो जाए। और परमात्मा, क्योंकि जैसे हमारी नियत थी, दान करने लगे, भक्ति करने लगे, सिमरन बढ़ाया, उतनी ही माया आप यानी ऐसी बरकत करने लगी परमात्मा की हम सोच नहीं सकते। पुण्यात्माओं विचार करके देखो, आप कितना हेराफेरी करके कितने पैसे कमा सकते हो, कर्म बिगाड़ सकते हो, माया दिख नहीं हो सकती। परमात्मा देगा जब आपको एक नंबर से देगा। इस दास ने एक प्लाट ले लिया, नाम लेते ही एक साल के बाद एक प्लाट लिया 16,000 का, और उसके ऊपर थोड़े से एक दो कमरे की कंस्ट्रक्शन कर दी, वो कुल मिलाकर मेरे ख्याल में 40,000 रुपए का खर्चा हुआ होगा, और नाम लिया ही था। उसके बाद क्या हुआ, अपने खूब भक्ति करी, ज्ञान समझ में आता चला गया, तो उस प्लाट के साथ से एक बाईपास निकल गया 2 वर्ष के बाद, और वो प्लाट फिर लाखों का बिक गया। उसका रेट इतना हो गया, कोई 2 नंबर से नहीं हो। तो कहने का भाव ये है कि हम अपनी जेई की नौकरी में मान ली हेराफेरी करके कितने पैसे कमा लेते, कर्म बिगड़ते, और परमात्मा ने एक नंबर से इतने दे दिए कि 10 साल तक भी हम कुकरे नहीं कमा सकते थे। तो क्या बताते हैं, माया दासी संत की उभी दे आशीष, और विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। उसके बाद फिर परमात्मा से हाथ जोड़ने पड़े मालिक, या तो घड़ी आन लगी और कहीं फिर दबा ले नीचे, हाथ जोड़े परमात्मा इतनी दे जितनी आवश्यकता हो, फिर धीरे धीरे से पीछा छुटवाने की चेष्टा की, जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम के पास कितनी माया थी और परमात्मा ने जब उसको ज्ञान दिया तो उसने उस माया का त्याग कर दिया। परमेश्वर ने यह भी कहा कबीर जी ने कि जा बेटा अब तू कर ले अपनी भक्ति बेच, क्योंकि तुझे ज्ञान हो गया अब तू माया में लिप्त नहीं होगा। हाथ जोड़ लिए परमेश्वर, अब तो पीछा छुटाओ इस बीमारी तय। तो हम पैसा मांगने आते हैं और फिर ये माया इतनी दे देगा भगवान, अपने हाथ जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा या दुश्मन है जीव की। कबीर माया तो ठगनी भाई ये ठगती फिर सब देश, जा ठग न माया ठगी ही ता ठग को आदेश। या माया सबको ठग है, किसने रावण ठगया और ये करोड़पति अरबपति हेलीकॉप्टर में मर जाते हैं तब खत्म हो गए, वो माया न ठगे क्यों, माया साथ गई को ना, माया जोड़ने में सारा जीवन खो दिया वो ठग लिए। और आप जी अब माया को ठग रहे हो क्योंकि आप इस माया का सदुपयोग कर रहे हो, पुण्य में लगाते हो। ये माया कहाँ लगती है, गुट्टी लाण में, शराब पीण में, कि तो फिर ब्याह करण में, ड्रामे करण में, कि तो बड़ी कोठी बनाने में। तो वो माया तुम्हें ठग रही है क्योंकि वो तो यही रह जानी है, तुम्हारे साथ जागी नहीं। और आप जी ने माया को ठगना शुरू कर दिया क्योंकि आपने या परमात्मा के नाम पर लगानी शुरू कर दी। पुण्यात्माओं आप विदेश में हो, आप जी ने स्वदेश जाना है, सतलोक जाना है, सचखंड जाना है, तो वहां जाने के लिए आपने जो संपत्ति वहां चाहिएगी उसकी करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी कैसे चेंज होगी कि जैसे आप यहां दान धर्म भंडारे में करोगे आपकी ये करेंसी वो पुण्य रूप में वहां लिखी पाओगी। तो जब आप जाओगे यहां जो आप जोड़ो हो वो तो यही रह जाएगी, और ये जो माया आप करेंसी चेंज करा रहे हो ये आपको आगे दरी पाओगी। कबीर कमाई आपनी कभू ना निष्फल जा, सात समुंदर आडे पड़े हुआ मिले आगा हुआ। ये आपकी की हुई सेवा और दान भक्ति कभी निष्फल नहीं जाएगी। कबीर ये माया ठगनी भाई ठगती फिरे सब देश, जा ठग ने माया ठगी ही ता ठग को आदेश। कि उसको प्रणाम है मेरी प्यारी आत्मा उन्होंने जिसने माया को ठगना शुरू कर दिया। कबीर मीठा सब कोई खाते है विष हो लागे दाए, कड़वी औषधि कोई ना गटके सब रोग मिट जाए। कहते हैं मीठा सब ही खाते हैं, मीठा कौन सा है, बैठ के गप्पे मार लिया फलाना ऐसा है, इब कबू हारेगा, इब कबू जीतेगा, वह पार्टी हारेगी वह जीतेगी, और फिर रागनी गाना, कंपटीशन होना, फिल्मी गाने सुनना। कहते इस मीठे को तो सभी खा रहे हैं और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, इनका रोग बढ़ता जा रहा है। और ये राम नाम की चर्चा, भगवान का मंत्र, ये कड़वी औषधि जो गटकेगा जिससे सारा रोग कट जाए। मीठा सब कोई खाते है विष हो लागे दहाए। कहती है गाने बजाने सुनने दूर की बकवादा में जीवन व्यर्थ करना, बंगले कोठी बनाने में, जो ये मीठा खा रहे हैं ये तो इनके लिए विष होगा, और कड़वी औषधि कोई ना गटके सब रोग मिट जावे। माया काल की खाने है धर तिरगुण विपरीत, जहां जावे ता सुख नहीं ये माया की रीत। कबीर माया तरवर तिरवद का साखा विसंताप, शीतलता सुपने नहीं फल फीका तन ताप। जल की का कहूं भव जल बूढ़े दास, और पार पर पति छोड़ के है करें आन की आश। अब क्या बताते हैं कि मोटी माया सब तजे जिनी तजी न जाए, पीर पगंबर ओलिया जिनी सबू को खाए। अब माया के प्रारूप बता रहे हैं, जैसे ऊपर की माया तज दी, गर्भी छोड़ दिया, संत बन गया, बाहर रहने लग गया, लेकिन मान बढ़ाई फिर भी ना छोड़ी, यह भी माया है। कबीर शंकर होते सबल है ये माया फा संसार, अपने बल छूटे नहीं छुड़ावे सिरजनहार। या माया कहते इतनी जबरदस्त आपके चारों तरफ लिपटगी आप अपनी ताकत से नहीं छूट सकते। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपनी कृपा से अपनी विधि आपको बता करके इस माया के जाल से छुटवाएगा। अब इसमें आपने परमात्मा की अमर वाणी में पढ़ा है, पार ब्रह्म पति छोड़कर और करें आन का जाप, अपने एक मालिक को छोड़कर, पार ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना को छोड़कर हम अन्य दूसरी साधना करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होती है। अब क्या बताते हैं, हमने परमात्मा सतपुरुष की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 13 में कहा कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वही उस परमात्मा को प्रिय होते हैं, वो उस परमात्मा के पास जाते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, सर्वभाव से यानी अनन्य मन से, अनन्य का अर्थ होता किसी और में आस्था ना रहे, उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा। उसके लिए क्या बतवाते हैं, अव्यभिचारिणी का अर्थ क्या होता है कि जैसे कोई लड़की बहन बेटी अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष में आस्था रखती है, उससे संयोग करती है, तो वो पति भरता नहीं रही, वो व्यभिचारिणी हो जाती है। और व्यभिचारिणी का कहीं आदर नहीं होता, सब जगह उसको हे दृष्टि से देखते हैं, वो पति के दिल से उतर जाती है। तो इसी प्रकार हमने अपने परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी भी देव में आस्था नहीं करनी है। और आप जी को बहुत कुछ ज्ञान दिया जाता है लेकिन या तो आप समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, कई बार आते हैं जैसे काम माया का कुछ ऐसा जोर है, कोई एक सत्संग सुनकर जाना पड़ जाता है, फिर दूसरे सदस्य आते हैं घर के, इस प्रकार टर्न भी लगाई जाती है। बहुत बार हम प्रत्येक सत्संग में तो ये नहीं बता पाते हैं, रह रह कर कहीं ना कहीं संकेत अवश्य हम देते रहते हैं समय अनुसार। तो आप जी को चाहिए कि आप यहां से सीडीज वगैरह बनती हैं जो दास बना रहे हैं भक्त चार करके देते हैं, ये ले जाइए और इन 6 दिन में 1 महीने में जब भी समय मिला यहां अवश्य सुनिए, और फिर इनको ले जाकर के घर पे भी टाइम निकालकर प्रतिदिन 1 घंटा 1/2 घंटा जिसा समय लगे अवश्य देखिए, तो उससे आपके हृदय में जगह रहेगी भगवान की और ज्ञान यज्ञ का फल भी आपको मिलेगा और डगमग ना हो सकोगे और प्रत्येक नियम का आपको ज्ञान होता रहेगा कि कौन कौन से नियम है, क्यों नियम एक बार भंग हो गए तो फिर परमात्मा आपकी मदद करना बंद कर देगा, फिर नाम टूट जाता है, मर्यादा में रहना अति आवश्यक है। तो क्या बताते हैं कि हम अपने मालिक को छोड़कर अपने एक परमात्मा रूपी पति के अतिरिक्त हम किसी और में आस्था करते हैं तो हम पति भरता नहीं रहे, हम पति भरता नहीं रहे क्योंकि फिर परमात्मा रुष्ट हो जाता है। अपुनात्मा परमात्मा पाने के लिए एक विधान बताया प्रभु ने, गुरु गोविंद कर जानिए परमात्मा को, गुरु जी को तुम परमात्मा मानकर चलना और रहिए शब्द समाए और मिले जब दंडवत बंदगी और नीत पल पल ध्यान लगावे। कबीर परमात्मा आगे कहते हैं गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, ओहें दुखी संसार में आग गई के फंद, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को जो मेरा कृपा पात्र है उसको मेरा ही स्वरूप जानना, अन्य में आस्था ना करना।